हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक तेजी से ऊपर नीचे सांसें ले रही थी, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। और अचानक सिद्धार्थ ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और अपने इमोशंस में बहकर उसे फोर्सफुली किस करने लगा। मगर झलक अब बिल्कुल भी सिद्धार्थ को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसने पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेल दिया, जिससे सिद्धार्थ पीछे की ओर गिर गया। तब झलक तुरंत उठ खड़ी हुई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको मेरी जिंदगी में इतने करीब आने का कोई हक नहीं है। और सुनिए, रणविजय मुझे आपसे कहीं बेहतर लगा है, और अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं उससे शादी भी जरूर कर लूंगी। वो तेजी से बोली, ओके मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के आसपास भी नहीं रहना चाहती। ये बोलकर देर न करते हुए झलक तुरंत वहां से बाहर निकल गई। वहीं सिद्धार्थ का गुस्सा अब काफी हद तक बढ़ चुका था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, किसी ने कभी मेरी इस तरह की बेइज्जती नहीं की, और वो भी वो लड़की जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा। गुस्से में उसने दीवार पर मुक्का मारा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों न चली जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तुमको मेरे करीब ही रहना होगा, सुन रही हो ना झलक। वहीं दूसरी ओर झलक सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे के बाहर खड़ा रणविजय ये सब सुन चुका था। उसके चेहरे पर एक धीमी मगर जहरीली मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बोला, अरे वाह मिस झलक, जितना मैंने सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा प्यारी हैं। पहली बार रणविजय खुराना को कोई सच में पसंद आई है, वो भी इतनी पसंद कि अब तो चैन ही नहीं। ये कहकर वो उस पल को याद करने लगा जब उसने झलक के साथ पहली बार बात की थी। वहीं झलक अपने कमरे में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद थकान और उदासी के बीच वो गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह, रात की काली छाया अब खत्म हो चुकी थी और एक नई हसीन सुबह सामने थी। झलक ने नींद से उठते ही अपनी माँ को याद किया। वो सबसे पहले उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ था उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ से फ़ोन मांग सके। उसे डर था अगर वो फ़ोन मांगेगी तो सिद्धार्थ क्या सोचेगा, कहीं ऐसा न लगे कि वो फिर से उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। इसलिए उसने चुप्पी साध ली और हॉल में जाकर चुपचाप बैठ गई। दादी ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची, इतनी उदास क्यों लग रही हो? झलक का दिल किया कि वो सब कुछ बता दे कि ना उसे रणविजय से शादी करनी है, ना ही किसी की धर्मपोती बनकर रहना है। वो बस अपनी सादी सामान्य जिंदगी चाहती है, वही जिंदगी जो उसके गांव में थी, जहां उसके माता पिता रहते थे। लेकिन उसके शब्द उसके दिल में ही दब कर रह गए। उसी वक्त रौनक वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस झलक, सर ने कहा था कि मैं आपका फ़ोन लेकर आऊं। एक्सीडेंट के वक्त आपका फ़ोन खराब हो गया था ना, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन दे दूं। ये सुनकर झलक के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। कल रात से वो बेचैन थी, लेकिन अब जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ। उसका दिल किया कि जाकर सिद्धार्थ को थैंक यू बोले, पर उसने अपने इमोशंस पर काबू रखा। थोड़ी देर बाद रौनक फिर बोला, वैसे मिस झलक एक और बात बतानी थी, मिस्टर खुराना ने आपका सारा सामान पैक करवा दिया है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर चेक कर लें, क्योंकि कल के बाद आप खुराना हाउस में शिफ्ट हो रही हैं। ये सुनकर झलक हैरान रह गई। वो तो खुद चाहती थी कि वो अपार्टमेंट से निकल जाए, लेकिन ये जानकर कि सिद्धार्थ ने खुद उसका सामान पैक करवा दिया, उसे अंदर से झटका लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर सिद्धार्थ के दिमाग में चल क्या रहा है? वो रणविजय से मेरी शादी भी नहीं होने देना चाहता, मुझसे दूर भी रहना चाहता है, पर फिर भी मेरे साथ हर वक्त जुड़ा रहना चाहता है, क्यों? थक कर उसने निश्चय किया कि अब बहुत हो चुका, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो दादी के पास गई और बोली, दादी मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और प्लीज़ आपको मेरी बात माननी ही होगी। दादी ने प्यार से मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और बोली, रे मेरी प्यारी बच्ची, बताओ ना क्या बात है? और तू मुझसे क्या बात करना चाहती हो? अरे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ मेरी प्यारी। ये बोलकर दादी ने भरपूर झलक को प्यार जताया था। अब दादी का इतना प्यार पाकर झलक का दिल अंदर से बहुत दुख सा गया था। वो सोचने लगी थी, दादी मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं? काश दादी मुझे इतना प्यार ना करतीं। जिस तरह से ओबेरॉय परिवार मुझसें नफ़रत करता है, काश दादी भी उतनी ही नफ़रत करती तो कितना अच्छा होता। फिर तो आसानी से दादी का दिल तोड़कर जा सकती थी। कहीं ना कहीं झलक आज दादी को देखकर बहुत सारी बातें सोच रही थी। वो सोच रही थी कि काश दादी बिल्कुल भी अच्छी ना होती तो झलक को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल झलक को गहरी सोच में डूबा देखकर दादी ने एक बार फिर प्यार से उसके सिर को सहलाया और बोली, क्या बात है बेटा, बोलो ना, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ कहना चाहती हो तो बोलो, जवाब दो। तुम्हारी दादी हूँ मैं, सुन रही हूँ तुम्हारी बात। तब झलक ने सोचा कि दादी से बात कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि वो बिना बताए ही चली जाए, और वो भी दादी की पार्टी से पहले पहले। जल्दी से उठ खड़ी होकर वो अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना सामान देख लेने की सोचने लगी। झलक ने मन में तय कर लिया था कि अब उसे देर नहीं करनी चाहिए और वहीं से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना वो दादी और बाकी सबके बारे में सोचती रहेगी उतना ही वो यहाँ बुरी तरह से फंस जाएगी। इतना कुछ उसकी जिंदगी में हो चुका था कि अब वो सब चीज़ों से निकलना चाहती थी, इतने सारे सरदर्द झेलना चाहती थी। इसलिए झलक उठी और रौनित को देखकर बोली, मिस्टर रौनित, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं अपना सामान एक बार चेक कर लेती हूँ। उसने ये तक नहीं बोला कि वो वापस के सामान लेकर मेंशन आएगी। दादी को तभी एक अजीब सा धक-धक महसूस हुआ। झलक को देखकर बोली, झलक बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नौकरों को भेज देती हूँ ताकि वे तुम्हारे साथ जाकर सामान लेकर आ जाएं। तब झलक बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, वैसे भी मुझे अपना काम खुद करने की आदत है, और वैसे भी मेरा सिर्फ एक बैग ही तो पड़ा होगा, ढेर सारा सामान नहीं है, परेशान मत होइए। ये बोलकर झलक रुकी और रौनित को देखकर बोली, चलो चलते हैं। वहीं सिद्धार्थ दरवाजे के पास खड़ा था, वो झलक को देख रहा था। असल में वो झलक से वही मुलाकात करना चाहता था। दरवाजे के पास जाते जाते झलक रुकी और एक नज़र मुड़कर दादी को देखा। थोड़ा सा संभल कर वो एक बार फिर जाकर दादी को गले से लगा लिया। अब दादी थोड़ा हैरानी से भर गई और बोली, बेटा, तुम तो मुझे इस तरह से गुड बाय कह रही हो जैसे कि तुम वापस नहीं आने वाली। देखो, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारा गम बर्दाश्त कर पाऊँ। जैसे जा रही हो वैसे ही सलामत थोड़ी देर में वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, समझी तुम? ये बोलकर दादी ने झलक को गहरी चेतावनी दे दी थी। कहीं ना कहीं दादी की बात सुनकर झलक का मन भर आया। उसने मन ही में कहा, सॉरी दादी, लेकिन ये वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। ये सोचते हुए झलक फटाफट बाहर की ओर बढ़ गई। वहीं सिद्धार्थ ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। अचानक उसके दिमाग पर कुछ भारी सा लटक गया। उसने तुरंत एक कॉल किया और पूरे मामले की जाँच करने के लिए कह दिया। दूसरी ओर अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही झलक की आंखें पूरी तरह से नम थीं। उसका दिल टूटकर बिखरने को जा रहा था। दादी से उसका जो रिश्ता और लताव बन गया था उसे छोड़ना आसान नहीं था।
लेकिन बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बात सिद्धार्थ खुराना की भी थी। जाने अनजाने में सही सिद्धार्थ को गालियां देते देते, उससे नफरत करते करते झलक उससे गहरी मोहब्बत कर बैठी थी।